नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। शिक्षा सामग्री कंपनी एस चंद एंड लिमिटेड कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा साइंस पर केंद्रित शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच न्यूरॉन इंटेलिजेंस प्राइवेट लिमिटेड में अपनी पूरी हिस्सेदारी यूनिकॉर्न फिजिक्स वाला को करीब 14 करोड़ रुपए में बेचेगी। कंपनी ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। एस चंद एंड कंपनी ने दिसंबर 2021 में न्यूरॉन में 7 करोड़ रुपए का निवेश किया था। कंपनी ने बयान में कहा, एस चंद एंड लिमिटेड लगभग 14 करोड़ रुपए में न्यूरॉन इंटेलिजेंस प्राइवेट लिमिटेड में अपनी पूरी हिस्सेदारी फिजिक्स वाला को बेचेगी। इसके अलावा हमारे सह निवेशक मुकेश शर्मा फैमिली ट्रस्ट न्यूरॉन इंटेलिजेंस प्राइवेट लिमिटेड में अपने निवेश से बाहर निकलेंगे। कंपनी ने कहा कि वह अपने मूल निवेश के दोगुना रिटर्न के साथ न्यूरॉन से बाहर निकल रही है। श्नाइडर इलेक्ट्रिक बेंगलोर में नए स्मार्ट कारखाने के विकास पर 425 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा, नई सुविधा बेंगलुरु में कंपनी के मौजूदा 10 कारखानों में से 6 को एक जगह एकीकृत करेगी। योजना के तहत नए कारखाने को मौजूदा 5 लाख वर्ग फुट क्षेत्र से बढ़ाकर 10 लाख वर्ग फुट किया जाएगा। श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक अनिल चौधरी ने कहा, नया विनिर्माण परिसर वैश्विक स्तर पर हमारे सबसे बड़े स्मार्ट कारखानों में से एक होगा। ये आने वाले वर्षों में देश की आर्थिक वृद्धि और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। अग्रणी शराब विनिर्माता कंपनी सूला वाइन यार्ड्स के शेयर की बृहस्पतिवार को सुस्त शुरुआत की। कंपनी के शेयर निर्गम मूल्य 357 रुपए से करीब 8% की गिरावट के साथ बंद हुए। बेसी पर कंपनी का शेयर निर्गम मूल्य 357 रुपए से 0.27% की बढ़त के साथ 358 रुपए पर सूचीबद्ध हुआ। दिन के कारोबार में ये 363.40 रुपए के उच्चतर स्तर तक गया और 328.60 रुपए के निचले स्तर तक आया। अंत में कंपनी का शेयर 7.24% की गिरावट के साथ 331.15 रुपए पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी के शेयर की शुरुआत 1.12% की बढ़त के साथ 361 रुपए पर हुई। अंत में ये 7.59% की गिरावट के साथ 329.90 रुपए प्रति शेयर पर बंद हुआ। बीएसई पर कंपनी का बाजार मूल्यांकन 2,788.24 करोड़ रुपए है। मात्रा के लिहाज से बीएसई पर 4.23 लाख शेयरों और एनएसई पर 80.73 लाख शेयरों का कारोबार हुआ। पिछले हफ्ते कंपनी के निर्गम को 2.33 गुना अभिदान मिला था। कंपनी के 960.35 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 340 से 357 रुपए प्रति शेयर के बीच तय किया गया था। सकारात्मक वैश्विक रुझानों के बावजूद प्रमुख शेयर सूचकांक बृहस्पतिवार को शुरुआती बढ़त को कायम नहीं रख सके और बाजार लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुआ। इससे पहले बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक का ब्यौरा जारी हुआ था, जिसका असर बाजार की धारणा पर पड़ा। सकारात्मक शुरुआत के बावजूद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स बढ़त बरकरार नहीं रख सका और कारोबार के अंत में 241.02 अंक पर या 0.39% की गिरावट के साथ 60,826.22 पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 71.75 अंक या 0.39% गिरकर 18,127.35 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, लार्सन एंड टुब्रो, एक्सिस बैंक, एनटीपीसी में नुकसान रहा। दूसरी ओर अल्ट्राटेक सीमेंट, इंफोसिस, एशियन पेंट्स, कोटक महिंद्रा बैंक, सन फार्मा और भारतीय एयरटेल फायदे में रहे। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख भी घरेलू शेयर बाजारों में जोश भरने में विफल रहा। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक का ब्यौरा जारी होने से भी घरेलू बाजार में बिकवाली हुई, क्योंकि इसमें केंद्रीय बैंक ने कुछ सख्त टिप्पणियां की हैं। उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत के खुदरा क्षेत्र में अपनी स्थिति को और मजबूत करने की कवायद के तहत जर्मनी की कंपनी मेट्रो AG के भारत में थोक परिचालन का 2,850 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करेगी। एक संयुक्त बयान में कहा गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की अनुषंगी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया में 100% इक्विटी हिस्सेदारी के 2,850 करोड़ रुपए में अधिग्रहण के लिए आज एक पक्का समझौता किया है। इस अधिग्रहण से रिलायंस रिटेल को कई अहम शहरों में मौके की जगहों पर स्थित 31 बड़े आकार के मेट्रो इंडिया स्टोर्स तक पहुंच मिल जाएगी। इसके अलावा वह बड़ी संख्या में पंजीकृत किराना एवं अन्य संस्थागत ग्राहकों और आपूर्ति के बावजूद और आपूर्ति के मजबूत नेटवर्क से भी जुड़ जाएगी। बयान में कहा गया कि ये सौदा मार्च 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। RRVL की निदेशक ईशा अम्बानी ने कहा, ये अधिग्रहण छोटे व्यापारियों और उद्यमों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग के जरिए साझा समृद्धि का अनोखा मॉडल बनाने की हमारी नई वाणिज्यिक रणनीति के अनुरूप है। दूरसंचार उद्योग के वैश्विक निकाय GSM एसोसिएशन ने दूरसंचार विभाग से कहा कि उसे 6000 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी बैंड के आवंटन पर काम करना शुरू करना चाहिए। GSMA ने विभाग को लिखे एक पत्र में कहा कि भविष्य में 5G सेवाओं के विस्तार के लिए ऐसा करना जरूरी है। सरकार ने 3670 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी की, जिसे मध्यम बैंड के रूप में जाना जाता है। इसे 5G सेवाओं के लिए सबसे उपयुक्त बैंड के रूप में पहचाना गया। GSMA का अनुमान है कि 2025 से अगले 5 वर्षों तक 5G की जरूरतों को पूरा करने के लिए मध्यम बैंड के लिए कुल स्पेक्ट्रम की मांग लगभग 2000 मेगाहर्ट्ज प्रति बाजार होगी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।